सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत काफ़ी समय के बाद दिल्ली के इस मंगोलपुरी सुल्तानपुरी के इलाके में सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये भी आपने अभी श्रवण किया कि एक पहली मार्च को दिल्ली से रवानगी जो हुई और दो और तीन मार्च को पटना बिहार में झारखंड और बिहार के प्रांतीय संत समागम पर अनेकों अनेकों भक्तों महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर मिला और इलाके में ये सच का पैगाम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। पैगाम मानवता, इंसानियत, प्रेम, भाईचारे वाला। और उसके अगले दिन ही नालंदा, जहाँ पर कभी एक पुरातन समय में सदियों पहले यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहाँ पर वो खंडरात देखने का मौका मिला, जहाँ पर कि उस समय में भी एजुकेशन को कितना महत्व दिया जाता था, वो जानने का देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर 5 तारीख से नेपाल के अनेकों अनेकों स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पर उस मुल्क में रहने वाले नेपाली भाषा भाषी भक्तों के जहाँ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ पर यही मानवता, इंसानियत के पैगाम को और आगे बढ़ाने में सभी ने जो योगदान दिया उस देखने का मौका मिला। पहले भी नेपाल जाने के अवसर बनते रहे हैं कभी कभार, लेकिन अक्सर नेपाल के समागम के रूप में ही 2-3 स्थान तक सीमित रह गए थे, जहां और कहीं जाने का अवसर दास को नहीं मिला। लेकिन इस दफ़ा 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक नेपाल के अनेकों अनेकों इलाकों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर भक्त जनों का ऐसा उपकार का जज्बा देखने को मिला, जो वहां के हालात भी पिछले काफ़ी समय से सभी जानते हैं कि वहां पर कितने कितनी अशांति रही है। और जब वहां पर भी जाने का मौका मिला, तब भी पहले और दूसरे दिन ही वहां पर कुछ बंद का सिलसिला बना हुआ, तो वहां पर भी अनेकों अनेकों सज्जन ऐसे मिले जो वहां पर अनेकों रूपों में असर रखते हैं इलाके में। वो भी यही बार बार करीब आकर बात कह रहे थे कि इस मुल्क में भी इतनी अशांति जो फैली हुई है, तो यहाँ पर भी शांति स्थापित हो। और इसी प्रकार से फिर नेपाल से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के संत समागम पर लखनऊ में एक विशाल रूम में महापुरुषों के भक्तों के दर्शन के साथ साथ उस इलाके में भी यही सच का पैगाम ये और आगे फैलाने में सभी ने अपने योगदान दिए और एक ऐसा सुंदर रूप बना उस नगर में, राजधानी में उत्तर प्रदेश की, कि सभी उससे प्रभावित हो रहे थे। और पटना में भी झारखंड बिहार का समागम जो हुआ वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले भी यही ज़िक्र कर रहे थे कि इतनी बड़ी हाज़िरी, और बिहार तो वैसे भी मशहूर है लेकिन फिर भी आपके इस समागम में जहाँ इतनी बड़ी हाज़िरी और इतनी सुचारुता, इतनी मर्यादा से गांव के अनेकों अनेकों वहाँ भक्त पहुँचे हुए उन मैदानों में, तो वो कहने लगे कि हमारे लिए भी हैरानगी की बात है, हम इसी प्रांत में रहते हैं और कितनी अराजकता बरसों बरसों से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये भक्त जनों ने तो ऐसी मिसाल कायम की है यहाँ पर। तो यही कहना पड़ा कि वह ये भक्त जन एक हुक्म में रहकर भक्ति करना जानते हैं, ये मर्यादा पूर्वक औरों की पहले सोचते हैं, आपाधापी जहाँ होती है वहाँ पहल अपने आप को दी जाती है, इसीलिए वहाँ पर हलचल ही रहती है, वहाँ पर अशांति रहती है। लेकिन जहाँ पर अपने से पहले दूसरे क्या सोचा जाता है वहाँ पर कोई खींचातानी नहीं होती, वहाँ पर दूसरे को विशेषता देते हैं तो सुचारुता बन जाती है। तो यही इन्होंने सीखा है, उसी के कारण ये समागम के इतने बड़े रूप में भी आप सुचारुता देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी जाने का मौका मिला महापुरुष भक्त जन अपनी भाषा में, अक्सर भोजपुरी भाषा में या नेपाल में नेपाली भाषा में, अपनी अपनी भाषा में यही मानवता का पैगाम दिए चले जा रहे थे। जिस मानवता की डगर को इंसान छोड़ चुका है, जो रास्ता इसने अख्तियार कर लिया है, उसका रूप सभी देख ही रहे हैं कि इस प्रकार से इंसान इतना असहनशील बनता जा रहा है, इंसान की संकीर्णताएं भी हमारे सामने हैं, लोभ लालच वो भी कितना अधिक बढ़ चुका है, इंसान की खुदगर्जियाँ ये भी हमें देखने को मिल रही है, अहम और अभिमान भी ये कितना इंसान में बढ़ चुका है, जिसके कारण इंसान अपना रास्ता छोड़ देने के कारण इस धरती के लिए, संसार के लिए एक नुकसान का कारण बना हुआ है। तो भक्त महापुरुष संत जन वो यही संदेश, यही पैगाम वहाँ दिए चले जा रहे थे, जहाँ नेपाल में दाखिल हुए और दूसरी जगह जो थी जहाँ सत्संग हुआ वो लुम्बिनी थी, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म, वहाँ पर भी उस समय के कुछ अवशेष देखने का मौका मिला, और वहाँ पर भी यही जिक्र किया गया कि गौतम बुद्धा जी ने भी एक अहिंसा के ऊपर कितना जोर दिया, और एक अहिंसक रहकर दूसरे पे हिंसा ना करके, ना वाणी के द्वारा हिंसा, ना व्यवहार के रूप में, कर्म के रूप में, बल्कि अहिंसक रहकर आपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है, और एक्सट्रीम से उभर कर जो मिडल पाथ उन्होंने बताया उसका भी जिक्र वहाँ पर हुआ। लेकिन इंसान आज इतना हिंसक हो चुका है, वाणी भी जख्म देने पे लगी रहती है, हिंसा हम किसको कहते हैं, हिंसा वो जो जख्म देती है, तो हमारी ज़ुबान, हमारी वाणी भी ये भी इतना गहरा ज़ख्म देती है, हमारे व्यवहार भी वो भी एक ज़ख्म देने वाले बन जाते हैं। तो महापुरुषों ने एक अहिंसा परम धर्म इसी को ही महत्ता दी है। इंसान इंसान का नुकसान करने वाला साधन ना बने, इंसान इंसान का हितैषी बने, हितकारी बने, एक ही ह्यूमन काइंड का अंग होने के कारण इंसान ही इंसान के काम आए। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि जानवर और पशु तो इंसानों के काम आ रहे हैं, लेकिन इंसान ही इंसान का नुकसान करने वाला बना हुआ है। जानवरों में पशुओं में इतनी खुदगर्जियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, वो उसी तक सीमित रहेंगे जहाँ पर उनका कहीं पर आहार की ज़रूरत है, उतने तक ही रह जाते हैं, बहुत सीमित सा सिलसिला। लेकिन खुदगर्जियाँ इंसान में ही सबसे अधिक देखी जाती हैं। जानवर और पशुओं को काहे का अभिमान? कोई अभिमान नहीं, अभिमान और अहंकार का रोगी इंसान ही है। इसी प्रकार से संकीर्णताओं को देखते हैं, ये भी इंसान में, जिस इंसानी जामे को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, और यही इंसान की चाल सबसे नीची देखी जाती है। तो महापुरुष संत जन, गुरु पीर पैगंबर, वो यही इंसान को युगों युगों से समझाने का प्रयास करते आ रहे हैं कि इंसान अगर इस बात को समझ जाए तो इंसान अपने असली एक अस्तित्व में ये कायम हो सकता है, ये उसी पहचान को बना सकता है जो गुरु पीर पैगंबरों ने इससे उम्मीद की थी, और वही इसकी असल पहचान है। ये जिस्म इसकी असल पहचान नहीं है, ये आकृति इसकी इंसान होने वाली पहचान नहीं है। इसकी असली पहचान इसके व्यवहार, इसके कर्म के द्वारा ही है। अगर ये उस डगर पर चल निकलता है जहाँ पर खुदगर्जी के बजाय दूसरे को सुख देने की भावना रहती है, दूसरे के काम आने की भावना रहती है, जहाँ पर शोषण नहीं पोषण का व्यवहार बनता है, जहाँ पर घृणा नफरत नहीं प्रेम की दौलत बांटी जाती है, प्यार से पेश आया जाता है जो कि मरहम का काम करता है, तो इस प्रकार से इसकी ये पहचान ये असली पहचान है। शरीर वाली पहचान इंसान होने वाली नहीं है। तो जो पहचान असल पहचान है उसकी तरफ ही महापुरुष बार बार एहसास कराते हैं कि इंसान तो इस कदर अगर संतों महात्माओं के बताए रास्ते पे चल निकलेगा, अगर तो इस प्रकार से भक्तों महापुरुषों की वाणी को केवल पढ़ने सुनने तक सीमित नहीं रखेगा, अगर तेरे में ये एहसास जाग जाए कि तूने हमेशा यहाँ रहना नहीं है, ये चार दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, कि ये वास्तविकता में तेरा ये वजूद जिस्मानी ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये इतना फ्रजाइल है एक कांच की तरह, कि कांच भी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अंदेशा रहता है कि ज़रा सी भी ठोकर, ज़रा सा भी कंकर उस कांच को तोड़ डालता है। इसी प्रकार से इसी इंसानी शरीर के अस्तित्व के बारे में यही कहा गया कि ये तन काचा कुंभ है, लिए फिरे तो साथ, फीका लागे टूटेगा कछु ना आयो हाथ। कि ये वो कच्ची कच्चा घड़ा है, कि इसकी कितनी बुकत है, ये कितनी इसकी मियाद है, कितना ये पुख्ता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इंसान ये जानते हुए भी अनजान बना रहता है, ये सोचता है कि मैंने तो हमेशा बने रहना है, मेरी ताकत ने बने रहना है, मेरी हुकूमत ने बने रहना है, जिन दौलतों के द्वारा मैं दूसरे को दबाता आ रहा हूँ, शोषण कर रहा हूँ, ये दौलतें हमेशा बनी रहेंगी, ये मेरी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये इंसान अपने आप के बारे में यही सोचता है कि जाने वाले और हैं, मैं तो कायम रहने वाला हूँ। तो महापुरुष संत जन इंसान को यही बताने का प्रयास करते हैं कि इंसान ये तेरा वजूद हमेशा रहने वाला नहीं है, इंसानी ये जामा, तो इसलिए तू वो पहचान बना ले, वो कर्म कर ले जिसकी शोभा इस संसार में भी और तेरे जाने के बाद भी तुझे सत्कार के साथ याद किया जाए। ऐसा तू कर गुज़र और यही तेरी पहचान आगे भी परवान चढ़ेगी, वरना तो आगे भी शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ेगा। जोर किया सो जुल्म है, कहता नाम हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगा कौन हवाल। वहाँ पर कौन हवाल होगा, कौन तेरी गवाही, इस संसार में तो झूठी सच्ची गवाहियाँ चल जाती हैं, यहाँ पर तो एक गवाहियों के सर के ऊपर दोषी भी बच जाता है और निर्दोष भी जकड़ा जाता है। लेकिन जहाँ पर अल्टीमेट पेशी है वहाँ पर कौन तेरा हवाल होगा, वहाँ पर किसी की चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा ईश्वर, ये पारब्रह्म, इसके आगे इंसान तेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तेरे बाहरी कर्म नहीं, तेरे सोच तेरे ख्याल भी इससे छुपे हुए नहीं हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तू ऐसे रास्ते पे चल निकल जो रास्ता चलने वाले यहाँ पर भी यश उन्होंने पाया और हमेशा के लिए उनका रुतबा इतना ऊंचा रहा है। सदियाँ बीत गई, युग बीत गए, लेकिन उनका रुतबा वो कायम रहा, ना कोई तलवारें उस रुतबे को कम कर सकी, ना उनको बदनाम करने की कोशिशें करने वाले करते रहे अपनी जगह पे, लेकिन उनका रुतबा वहाँ का वहाँ ही रहा, ना कोई सम्राट ना जुल्म करने वाले उनके रुतबे को कहीं पर वो कम कर पाए, उनका जो स्थान था वो कायम का कायम है। तो हर इंसान को भी यही याद कराया जाता है, यही एहसास कराया जाता है कि इंसान तू भी वही रास्ता अपना ले, तू भी वही कर गुज़र कि इत्थे मिलन वडियाइयां दरगे मोक्ष द्वार, कि यहाँ पर भी तुझे बढ़ाई मिले और यहाँ पर भी जितनी देर तू सफ़र तय कर रहा है कि दूसरे को भय देने वाला नहीं, दूसरे का नुकसान करने वाला नहीं, बल्कि दूसरे को राहत देने वाला, इस कदर तेरा ये यहाँ पर सफ़र हो, तेरा जीवन का इस कदर मधुर सफ़र हो, जहाँ पर तुझे याद करके लोग सुकून महसूस करें, तेरी याद करके एक राहत की महसूसियत करें, ना कि तेरा ख्याल आते ही उनके मन में कल्पना पैदा हो जाए, एक बेचैनी पैदा हो जाए। इस कदर तू फूल के मानिंद, फूल आप जानते हैं कि फूल सामने होते हैं तो फूल कहाँ पर किसी को बेचैन करते हैं। फूल देखते ही हम एकदम से अपने आप को कुछ आनंदमय महसूस करते हैं, चाहे वो टहनी के ऊपर लगे हुए फूल हैं, चाहे क्यारियों में लगे फूल हैं, या फिर हार के शक्ल में हैं, या हमारे हाथ में एक फूल आ गया है उसको भी हम पकड़ कभी नाक तीतर की तरफ लेके जाते हैं उसकी वासना लेने के लिए, उसको देख देख कर हर्षाते हैं। इसी प्रकार से इंसान तो इस कदर का रूप अपना बना ले जीवन व्यवहार कर्म के रूप में, जो कि एक फूल के मानिंद है, जो कि आनंद देने वाला है, सुकून देने वाला है। कहीं पर भी चला जा, कहीं पर भी रह ले, तू ऐसा एक असर छोड़ने वाला बन जा। तो यही इंसानों को महापुरुष संत जन ये संदेश और पैगाम ये देते आ रहे हैं। हर युग हर दौर वाले के लिए इसकी अहमियत है, हर युग और हर दौर वाले के लिए इसकी अहमियत है। और इंसान तो आज भी वो अपने जीवन में रूपांतरण ले आ, वहाँ पर ही जहाँ गौतम बुद्ध जी का जिक्र हो रहा था, वहीं पर ही सम्राट अशोक का जिक्र आना भी ज़रूरी था, क्योंकि सम्राट अशोक ने महात्म गौतम बुद्धा जी की शिक्षाओं को फिर कहाँ कहाँ पहुँचाया। और ये नहीं कि वो सहज में ही उस तरफ बढ़ निकले, उन्होंने भी कलिंगा वॉर या और ऐसी जंगों में हज़ारों की को मौत के घाट उतारा था। पहले कोई वो गौतम बुद्धा जी वाली प्रवृत्ति वाले नहीं थे, सम्राट थे और वही जंगें करके हिंसा करके किस कदर दूसरे साम्राज्यों से दौलत इकट्ठी करनी इत्यादि। लेकिन एक ऐसा रूपांतरण हो गया कि फिर वही गौतम बुद्ध जी के उसी अहिंसा वाले प्रचार को आगे से आगे बढ़ाने वाले बन गए। तो कहने का भाव यही है कि इंसान ये रूपांतरण ये तू भी ले अपने जीवन में, बदलाव बदी से भलाई की तरफ, ना कि अगर कुछ थोड़ा बहुत तू संभला है, थोड़ी बहुत तेरे में अगर नेकी है भी, उसका भी दामन तू छोड़ दे, यानी कि भलाई से बदी की तरफ चला जा। ये तो अंधकार से प्रकाश की ओर, इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर, दानवता से मानवता की ओर, और मानवता से देवता की ओर। तो ये बदलाव, ये तेरे कदम उठाए हुए, इसी को ही आगे बढ़ना, इसी को ही प्रगति कहा जाता है। यही जो रूपांतरण ये सुखद है, यही तब्दीली कल्याणकारी है अपने लिए और औरों के लिए। तो अगर इंसान खुद गर्जियों में जी रहे हैं, अगर लोभ लालच इतना प्रबल है, इतना अहम प्रबल है, इतनी संकीर्णताएं प्रबल हैं, तो इसको रूपांतरण दे दिया जाए, एक बदलाव आ जाए जहन दिलो दिमाग में, सोच में, विचार में, कि ये बदलाव ऐसा हो जाए, अंधकार उजाले में तब्दील हो जाए, नफरत प्रेम में तब्दील हो जाए, संकीर्णता विशालता में तब्दील हो जाए, उतावलापन सबर और संतोष में तब्दील हो जाए, हिंसा अहिंसा में तब्दील हो जाए, और इस प्रकार से लोभ लालच की बजाय सेवा के जज्बे बढ़ जाएं। तो इस तरह से ये बदलाव, ये रूपांतरण ये अगर आ जाए तो वाकई ही घर मोहल्ले समाज शहर गांव कस्बे मुल्क विश्व सब जगह के ऊपर एक ऐसा रूप बन जाए, ऐसा वातावरण बन जाए और वाकई ही जिसको जन्नत कहते हैं, ये बन जाए, ये स्थापित हो जाए। तो आज भी इस सत्संग में यही संदेश, यही पैगाम गीत कविता व्याख्यान के रूप में दिया जा रहा था कि हम अवश्य इस और गौर करें, इससे पहले कि देर हो जाए, तो समय रहते हुए ही हम आधार बना लें ये सत्य को, इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को। यही उजाला है, यही रोशनी है, यही प्रेम का स्रोत है, यही निर्मल है, यही पावन है। इसको आधार बना लिया जाए, इससे नाता जोड़ लिया जाए, इसको जहन दिलो दिमाग में बसा लिया जाए और इसी का रंग मन के ऊपर चढ़ा लिया जाए। अभी चंद रोज़ में होली आने ही वाली है और होली में भी रंगों का इस्तेमाल और ज़िक्र होता है, तो यहाँ पर भी जिस रंग का ज़िक्र हो रहा है, ये ऐसा रंग भक्ति का, प्रेम का, नाम का, ये रंग हर मन के ऊपर चढ़ जाए, यही एक महापुरुष संत जन प्रेरणा देते हैं और यही शुभकामना करते हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे ज़्यादा चाहेगा सत्संग जी धन।